भूमिका भारतीय संस्कृति स्वभाव के से संश्लेषणात्मक है। इसमें विभिन्न पंथों के विचार समाविष्ट हैं। यह अपनी परिधि में समाज के विकास के विभिन्न स्तरों को की आस्थाओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, संस्थाओं, कलाओं, धर्म और दर्शन को समेटे हुए है। यह निरंतर उन विषम जातीय तत्वों को एक करने का प्रयास करती है जो इसे समग्र बनाते हैं। सबसे बदतर हालत में इसकी कोशिशें एक मशीनी संस्थिति में जाकर समाप्त होती है, या फिर सबसे बढ़िया स्थिति यह होती है कि ये कोशिशें एक जीवंत प्रणाली को विकसित करने में कामयाब होती है। भारतीय जीवन की जटिलता प्राचीन है, क्योंकि भारत इतिहास के उषा काल में से विरोधी सभ्यताओं का मिलन बिंदु रहा है। उसके उत्तर पश्चिमी प्रवेश द्वारों से विशाल झुंड और विजयी सेनाएं लगातार आती रही हैं, और इनके आने से नील नदी की बाढ़ के समान बहुत बर्बादी तो आई, किंतु ऐसी मूल्यवान बातें भी आईं कि जिनसे यह प्राचीन भूमि समृद्ध बनी और उसके फलस्वरूप ज्यादा ताजा और ज्यादा समृद्ध संस्कृतियां उत्पन्न हुईं। इन विदेशी आवेगों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सच तो यह है कि इसके सांस्कृतिक विकास को तीन धाराओं के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है, जिससे उनके अपने चक्र की एक विशिष्ट आकृति उभर कर आए। भारत में समाज में हमेशा से दो अलग अलग स्तर रहे हैं, एक उच्च और दूसरा निम्न। पहले की तादाद कम रही है, किंतु उसके पास अत्यंत विकसित धर्म, सामाजिक विचार और संस्थाएं रही हैं, और दूसरे में बहुत भारी तादाद में लोग थे जो सांस्कृतिक सीढ़ी के नीचे के पायदान पर रहे हैं। पहला वर्ग भारतीय संस्कृति का बौद्धिक और अविजात्य तत्व प्रदान कराता है, और दूसरा वर्ग लोग तत्व प्रदान कराता है। इन दोनों तत्वों के बीच आदान प्रदान होने से दो तरह की आकृतियां उभरती हैं, और तीसरी आकृति विदेशी प्रभाव से उभरी। ये विदेशी ताकतें शांतिपूर्ण तरीकों से या ताकत से देश में प्रविष्ट हुई, और इसने यहाँ के रूपांकन को पूरा करने में अपना योगदान दिया। तीनों तत्वों का संश्लेषण और नई संस्कृतियों का विकास यहाँ की प्रजाति की विशेष प्रतिभा द्वारा उसके अपने ही तरीके से हुआ, और एक युग के बाद दूसरे युग में यह प्रक्रिया जारी रही। इतिहास में इन कलाओं को निर्धारित किया जा सकता है और उन्हें गिना जा सकता है। सबसे पहले भारतीय इतिहास को मोटे तौर पर तीन युगों में बांटा जा सकता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पहला युग प्राचीनतम काल से ईसा की 8वीं सदी तक रहा, दूसरा युग 8वीं सदी के बाद 1000 साल का रहा, और तीसरा युग 19वीं सदी से शुरू होकर अभी तक चल रहा है। प्राचीन युग को चार कालों में बांटा जा सकता है, वैदिक काल 7वीं सदी ईसा पूर्व तक रहा, बौद्ध काल ईसा की दूसरी सदी में रहा, प्रारंभिक हिंदू काल तीसरी सदी ईस्वी के मध्य में रहा, और परवर्ती हिंदू काल 8वीं सदी ईस्वी में रहा। मध्यकाल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, 8वीं से 13वीं सदी तक प्रारंभिक मध्यकाल, और बाद में 13वीं सदी से 18वीं सदी के अंत तक का काल। पहले काल में भारत में कबीलों और नस्लों के पारस्परिक झगड़ों के कारण उथल पुथल वाली स्थिति थी, जिसमें एक समूह दूसरे समूह पर अपनी सभ्यता थोपने की कोशिश कर रहा था। आर्य और अनार्य लड़ रहे थे, और केवल राजनीतिक और आर्थिक कारणों से युद्ध नहीं होते, बल्कि पंथ और संस्कृति के कारण भी युद्ध होते हैं। वैदिक काल का साहित्य इस विराट सामाजिक टकराव का दर्पण है। यह दर्पण उसके विभिन्न चरणों, जरूरी नहीं कि एक के बाद एक हो, को प्रकट करता है। आर्यों के आगमन की शुरुआत जब विजेता योद्धा और पुरोहित विजयोन्मत्त होकर उन दिव्य देवताओं की प्रार्थना में उल्लासमय विजयगान करते हैं, जो उन्हें विजय, समृद्धि और लंबे जीवन का वरदान देते हैं। इसके बाद बस्तियां बसने और उत्तर भारत में उनके फैलने की प्रक्रिया चलती है। तब चिंतन और नव विजित भूमि का प्रशासन करने की जिम्मेदारियों के कारण वे गंभीर होकर उन ऋचाओं को गाते हैं जिनमें सामाजिक संगठन के बारे में, ब्रह्मांड के जन्म के बारे में, मानव नियति और अंतिम सत्य के बारे में उनके विचार निहित थे। अंत में विजेताओं और विजितों का समन्वय हुआ और धर्म ग्रंथों में चिंतन और दर्शन के बाजू में कर्मकांड भी जगह बना लेते हैं और जीववादी आस्थाएं और जड़ पूजा ब्रह्मांड और सर्वेश्वरवादी ईश्वर तत्व के साथ मिलकर चलते हैं। ऋग्वेद विशेषकर उसके दूसरे से दसवें मंडल में पहले चरण का विवरण है, यानी इसमें सिंधु और सरस्वती के तटों के बीच में भारत के उत्तर पश्चिम के इन प्रारंभिक आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का वर्णन है। ऋग्वेद का पहला और दसवां मंडल, सामवेद और यजुर्वेद उनके आगे के चरण का, और अथर्ववेद और ब्राह्मण वैदिक चक्र के पूरे होने का उल्लेख करते हैं। जब उत्तर भारत से लेकर गंडक पर उनका अधिकार हो गया और वहां के मूल निवासी वैदिक सामाजिक प्रणाली में आ गए। वैदिक काल का अंत सातवीं और छठवीं सदी ईस्वी पूर्व के लगभग हो गया। उसके बाद एक नए काल की शुरुआत हुई जिससे वैदिक संस्कृति का प्रबल विस्तार होने से उसमें ऐसा जबरदस्त विकास हुआ कि वह करीब करीब खंड खंड में बिखर गई। यह लहर दो स्रोतों से आई, एक तो भीतरी उत्सुकता से जो समाज में क्षत्रिय वर्ग के दावे का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और दूसरी पश्चिमी जगत के साथ विचारों के रहस्यमय और प्रखर आदान प्रदान से। छठवीं सदी विश्व के इतिहास का अत्यंत आश्चर्यजनक युग था। उस समय वैचारिक और वाणिज्य जगत के प्रसार बिंदु और संस्कृति के महान केंद्र वेबिलान शहर से विचार एक देश से दूसरे देश में गए और उन्होंने सुदूर चीन से मिस्र, यूनान और रोम में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। वैदिक संस्कृति पर इन प्रभावों का परिणाम यह हुआ कि विज्ञान, दर्शन और बौद्धिक क्षेत्र में विविध चिंतनों और कविता, कला तथा भावनात्मक क्षेत्र में भक्ति के नए युग का प्रारंभ हुआ और बुनियादी वैदिक धर्म व्यवस्थित होने के साथ ही लोकप्रिय भी हुआ। इस काल में उपनिषद और भगवत गीता का संकलन हुआ, दर्शन की पारंपरिक विचारधारा प्रारंभ हुई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य विविध विचारधाराओं की स्थापना हुई, महाकाव्य और पुराण की प्रारंभिक रचनाएं रची गईं, छंद शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद का विस्तार हुआ और युद्ध विज्ञान, प्रशासन, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का पोषण हुआ। इस काल का प्रारंभ शिशुनागों के उत्थान से और मौर्य राजवंश के पतन के समय हुआ, 600 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व। साम्राज्य विस्तार और सांस्कृतिक वैभवों के इस अद्भुत काल के अंत के लगभग उत्तर पश्चिम क्षितिज पर फिर से बर्बर झुंडों और विदेशी आक्रांताओं के उदय के काले बादल छा गए। एंटियोकस महान, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइड्स और मिनेडर सीमाओं पर मंडराने लगे या देश में प्रवेश कर गए और यूची तथा शकों के बर्बर प्रवाहों से दर्रे परिपूर्ण हो गए और सिंध, पंजाब और मथुरा के आसपास के मैदानों में उनकी बस्तियां बस गईं और उन्होंने सौराष्ट्र के प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। इन घटनाओं का असर मौर्यों के पतन पर कितना हुआ इसका अनुमान लगाना कठिन है, किंतु यह सब नए युग के प्रारंभ के बाद ही हुआ जिसमें हिंदू धर्म ने फिर से पैर जमाए। यह संक्रमण का युग था। संस्कृत का अध्ययन राजकीय संरक्षण से पुनर्जीवित हुआ, महान पुराणों का फिर से संपादन हुआ, स्मृतियों में लोकप्रिय गाथाएं संकलित की गईं और सबसे प्राचीन पुराण दार्शनिक चिंतन का अस्पष्ट पुंज क्रमशः विचारधाराओं में केंद्रीभूत होने लगा। विष्णु और शिव पूजा ने धार्मिक देवकुल के अन्य देवताओं की पूजा को उखाड़ फेंका। बौद्ध धर्म चीन, मध्य एशिया और ईरान तक फैल गया, और हालांकि वह हीनयान और महायान शाखाओं और उनकी उपशाखाओं में बट गया, उसका आधिपत्य अभी भी कला के जगत में सर्वोच्च था, और वह भरहुत, सांची, सारनाथ और अमरावती के स्मारकों के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहा था। जैन धर्म गुजरात और तमिल प्रदेश में फैल गया था, और वह अब श्वेतांबर और दिगंबर पंथ में बट गया था। यह शुंग, कण्व और सातवाहन ब्राह्मण राजवंशों के राजनीतिक आधिपत्य का काल था, जो 180 ईस्वी पूर्व से लेकर 235 ईस्वी तक रहा। पूर्ण अराजकता और अव्यवस्था के दृश्य के बीच अंतिम युग पर पर्दा गिरा। सातवाहन सत्ता के टुकड़े टुकड़े हो गए, और जिस साम्राज्य को कनिष्क ने पश्चिम भारत में निर्मित किया था वह विघटित हो गया, और जब नया युग प्रारंभ हुआ तब अत्यंत अस्थिर स्थिति थी, और उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण हो रहे थे, और यह बात अभीरो, गर्दभिल्लो, शको, यवनो, बाल्हिको और आंध्रों के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले अन्य विदेशी राजवंशों के बारे में पुराणों के धुंधले वक्तव्यों से परिलक्षित होता है। 100 साल तक भारत का इतिहास अंधकार से आच्छादित रहा, और यह अंधकार चौथी सदी में गुप्त राजवंश के उदीयमान सूर्य से छटा। आगामी 400 साल भारतीय संस्कृति के अग्रगामी चक्रों का उज्ज्वल युग था। राष्ट्रीय जीवन के हर हिस्से में महान उपलब्धियां प्राप्त की गईं। धर्म में हिंदू धर्म ने अपना अत्यंत विकसित रूप प्राप्त किया। शिव और विष्णु पूजा प्रमुख संप्रदाय हो गए। शाक्त संप्रदाय का उदय हुआ, किंतु वैदिक बलि का प्रचलन बंद हो गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार रुक गया, और वे क्रमशः लुप्त हो गए। हिंदू धार्मिक साहित्य में महाभारत का अंतिम संपादन और रामायण की रचना हुई, और पुराणों का फिर से संपादन किया गया। दर्शन में षट दर्शन पूरी तरह से व्यवस्थित किए गए। वैष्णव और शैव दर्शन तथा अन्य तांत्रिक और अपधर्मी विचारधाराओं का उदय हुआ। काव्य में कालिदास, दंड, बाण, भारवी और अन्य कवियों ने इस युग को सुशोभित किया, और गद्य में पंचतंत्र तथा अन्य परिकथाओं का संकलन किया गया, जो संसार की कहानियों का भंडार सिद्ध हुए। विज्ञान में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और वाराह मिहिर ने खगोल शास्त्र और गणित का विकास किया, तथा वाग्भट्ट ने चिकित्सा का कोष संकलित किया। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, सारनाथ और अन्य स्थानों में उपलब्धियां रहीं। हर्ष के साम्राज्य का अंत होने के बाद प्राचीन इतिहास का अंतिम अध्याय समाप्त हो गया, और नया युग शुरू हुआ, जिसे ठीक ही मध्यकाल कहा गया है। प्राचीन काल से मध्यकाल में आने से व्यापक बदलाव हुआ। राजनीतिक रूप से इसने उस साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया, जो एक शासक की सत्ता मानने वाले स्वायत्त राज्यों के संघ पर आधारित था। इसने अनवरत रूप से युद्धरत राजपूत कबीलों के विशिष्टवादी सामंतवाद की शुरुआत को देखा, जिससे मुस्लिम विजय का प्राप्त प्रशस्त हुआ। धर्म के क्षेत्र में अब इसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपने जन्म स्थान के रूप से पूरी तरह लुप्त होते और पूरे भारत में हिंदू धर्म की स्थापना और इस्लाम के स्पंदन के अंतर्गत उसका विकास देखा। कला के क्षेत्र में इसने वास्तुकला और चित्रकला की हिंदू मुस्लिम शैली का विकास देखा। साहित्य में इसने संस्कृत के ज्ञान का पतन और देशज भाषाओं का उत्थान देखा, जिसमें उर्दू भी शामिल थी। विज्ञान के क्षेत्र में इसने अरब अवधारणाओं को हिंदू चिकित्सा, गणित और खगोल शास्त्र में समाहित होते देखा। सामाजिक जीवन के सभी हिस्सों में बदलाव इतना ज्यादा था कि उससे एक नए युग की शुरुआत हुई। इस काल को 500 सालों के दो समान कालों में बांटा जा सकता है। पहला 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक और दूसरा 13वीं सदी से 18वीं सदी ईस्वी तक। पहले काल को प्रारंभिक मध्यकाल कहा जा सकता है और दूसरे को परवर्ती मध्यकाल। पहले काल के दौरान इस्लाम ने भारत में दक्षिण में शांति से और सिंध तथा उत्तर पश्चिम में ताकत से प्रवेश करना शुरू किया और दूसरे काल में यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप में सबसे बड़ी ताकत बन गया। देश में मुस्लिम प्रभावों से पैदा हुए बदलाव को स्पष्ट करने के लिए यह बताना जरूरी है कि उन प्रभावों के उदय होने के पहले देश की स्थिति कैसी थी। संस्कृति को दो शीर्षकों धर्म तथा दर्शन और कला में बांटना और भारत में मुस्लिमों के उदय के समय से लेकर 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के समाप्त होने तक हर शीर्षक के बारे में बताना सुविधाजनक होगा।